ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित झुग्गी बस्तियों के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। अप्रैल माह को विश्वभर में ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है और दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित झुग्गी बस्तियों के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से बातचीत भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्षों से उपेक्षित झुग्गी बस्तियों में अब अच्छे दिन की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और दिल्ली की डबल इंजन की सरकार का संकल्प हर बस्ती को सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही गरीबों तक विकास पहुंचाना है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब की चिंता कर रही है। उनके लिए जहां वो रहते हैं अच्छी सुविधाएं हों, वहां की नाली, खड़ंजा, शौचालय, बहन बेटियों के नहाने की जगह, बच्चों के खेलने का पार्क, वहां पे अच्छे पानी की सुविधा, ये सारे काम ये सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है उनको कराने के लिए।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक रविन्द्र सिंह नेगी, शिक्षा निदेशक, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में जर्जर बिल्डिंग के साथ ही पीने का पानी, साफ शौचालय, लैब की कमी, टीचरों का अभाव जैसी कई खामियां पाईं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। वहीं एक स्कूल के स्विमिंग पूल की दुर्दशा देखकर उसकी विजिलेंस जांच कराने के भी आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने स्कूलों की बदहाली को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा।
1.5 साल में शिक्षा क्रांति के जनक की विधानसभा है ये। पंजाब में जाकर गा रहे हैं, किसी दिन आते हैं बेरोजगार नेता चैनल पर कुछ बोल जाएंगे कि दिल्ली में ये बर्बाद हो गया। 60 दिन पुरानी सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आम आदमी पार्टी कहती है वो कहती रहे। हम दोष नहीं ढूंढते हैं, हम इन दोषों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दुर्भाग्य है 2 स्कूल चमकाकर विदेशी मेहमानों को ले जाकर उन्हें दिखाना, इकोसिस्टम के जरिए विदेशी अखबारों में छपवाना और उसको लेकर गाल बजाना, उनको आकर इन स्कूलों को देखना चाहिए।
स्कूलों के निरीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह विधायकों की शिकायत पर शहर के उन सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां स्कूल इमारत या शिक्षा व्यवस्था में कोई खामी है। दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में यातायात व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज खजूरी खास इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पर्यटन मंत्री ने खजूरी खास क्षेत्र के वृहद विकास के लिए अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खजूरी चौक के पास यातायात को तेज और सुगम बनाने के साथ साथ सौंदर्यकरण का तेजी से काम किया जाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और स्थानीय विधायक अजय महावर उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने आज सिंधु बॉर्डर स्थित गुरु तेग बहादुर स्मारक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक की स्थिति को लेकर पिछली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को लोगों को बताने के लिए यह स्मारक लगभग 15 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस स्मारक की उपेक्षा की जिसका कारण स्मारक की स्थिति बदहाल है। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी बताया कि पवित्र स्मारक जर्जर स्थिति में है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मना रहा है, जो देशभर में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा का फोकस चार मुख्य विषयों पर है। जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरी लड़कियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को सुधारना है। इसके आरंभ से अब तक पोषण पखवाड़े के 6 सफल संस्करण आयोजित किए गए हैं, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन में जागरूकता और समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
दिल्ली सरकार ने डॉक्टर बीआर आम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में दिल्ली सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 14 अप्रैल को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिक प्रमुख दादी रतन मोहिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रकाश, ज्ञान और करुणा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अप्रैल माह को विश्वभर में ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति के लिए समझ, स्वीकृति और समर्थन पर प्रकाश डालना होता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
इस वर्ष की थीम इस बात पर बल देती है कि ऐसा समावेशी विश्व बनाया जाए जहां ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की क्षमताओं को पहचानना और पोषित किया जा सके। ऑटिज्म के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के बाल रोग विभाग की न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने बताया कि ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकार है, जिसकी वजह से इससे पीड़ित व्यक्ति को एक दूसरे से घुलने मिलने और संवाद करने में परेशानी होती है।
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक हावभाव और कम्युनिकेशन यानी संचार में गुणात्मक हानि होती है। इन बच्चों में कुछ रिस्ट्रिक्टिव रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कोई उनकी रुचि होती है जो बिल्कुल फिक्स्ड होती है और कुछ दुरात्मक व्यवहार होते हैं।
डॉक्टर गुलाटी ने बताया कि एम्स नई दिल्ली बीते पिछले 28 वर्षों से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है ताकि उनका विकास हो सके। उन्होंने ये भी बताया है कि पीड़ितों के इलाज के लिए स्वदेशी डायग्नोस्टिक टूल्स भी तैयार किए गए हैं।
इसके स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए काफी सोशो कल्चरल सेंसिटिव टूल बनाया है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक बच्चे को इंडिया में और विदेश में वो अलग है। इसमें स्क्रीन करने के लिए हमारा 1 महीने से 18 महीने के एज तक के बच्चों के लिए हमारे स्क्रीनिंग टूल है, जिसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऑटिज्म का कोई रिस्क है।
ऑटिज्म जागरूकता माह के तहत लोगों को जानकारी देने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए रेसुद्दीन रिहान के साथ आदर्श।
जामिया मिलिया इस्लामिया में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन 10 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.jmi.ac.in पर जाकर छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 लोगों को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 10 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को राजधानी के जहांगीरपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये सभी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित अपने परिवारों से संपर्क करते थे। पकड़े गए लोगों के निर्वासन के लिए पुलिस ने उन्हें विदेशी पंजीकरण कार्यालय को सौंप दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शहजादे अल मक्तूम संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने में दुबई ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दुबई के शहजादे की यह यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रगाढ़ मित्रता की पुष्टि करते हुए भविष्य में और बेहतर रिश्तों का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे पहले दुबई के शहजादे ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग और जीवन संबंधों के बारे में दुबई के शहजादे की सकारात्मक भावनाओं की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहजादे के साथ बैठक को काफी सकारात्मक बताया और कहा कि आने वाले वर्षों में भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा उत्पादन, विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसराइल के कृषि मंत्री अवी दिख्तेर ने आज नई दिल्ली में कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय साझेदारी आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देश कृषि, नवाचार, जल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छोटे किसानों के लिए खेती को अधिक लाभदायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि बैठक के दौरान आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों के बारे में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले बीजों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे बढ़ते तापमान के बावजूद अधिक उपज सुनिश्चित हो सके।
नई रिसर्च होती है, वो रिसर्च हमारे किसानों तक जल्दी पहुंचे और एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके।
वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। पूर्व में विलय के कारण इन बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवम्बर में विलय की नई योजना शुरू की थी। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्कसंगत बनाना है। इस समय 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। इनकी 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाएं होंगी। इसमें लगभग 92% शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि उनके व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने के अवसर भी सृजित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने मौन क्रांति के जरिए उद्यमिता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए ये बात कही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित झुग्गी बस्तियों के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र के 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। अप्रैल माह को विश्वभर में ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है और दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।